चलते हैं आगे, दूसरी दुआ पे। इंशाल्लाह ताला एक एक करके इन दुआओं को जब हम सीखते जाएंगे, और कुछ हो ना हो, दुआ मांगने का सलीका ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि दुआओं में आप देख रहे हैं कितना अदब है और कितनी आजजी है। बस अब हम अल्लाह ताला के साथ एक धौंस वाले अंदाज में भी दुआएं मांग रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला हमें आजजी दे। कोई भी मांगे, आपका बच्चा ही आपसे कुछ क्यों ना मांगे, घर का मुलाजिम क्यों ना मांगे, या कोई बड़ा क्यों ना मांगे, जब तक वो आपसे इज्जत से बात ना करे, आपका दिल नहीं करता उसकी बात सुने। हालांकि हम सब एक ही जैसे हैं, तो एक तरफ खालिक और एक तरफ मखलूक, तो अल्लाह ताला के मामले में बादब रहना चाहिए, बेअदब नहीं। दूसरी दुआ जब हम मांगेंगे और सीखेंगे, हम इसके लफ्ज़ देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली वदलाइद्दीन वगलबत रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली वदलाइद्दीन वगलबत रिजाल। तर्जमा देखिएगा। ए अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ तेरे ज़रिए से परेशानी और गम से, आजिज़ हो जाने और काहली से, बुज़दिली और बुखल से, और कर्ज के बोझ और लोगों के तसल्लुत से। बहुत ही प्यारी दुआ है, हमने इसको पिछले अपने किसी सेशन में काफ़ी डिटेल से एक एक लफ्ज़ के रूट एनालिसिस के साथ पढ़ा था और याद किया था। ये लफ्ज़ जो हैं बुखारी के हैं, 6369। लेकिन अगर आप देखिए तो गम की या हम की मुमकिना सूरतें, एक होती है हमी, हम हामी मीम। आप देखते हैं ना कि उर्दू में भी हम गम के लिए दो तीन लफ्ज़ बोलते हैं, जैसे अभी भी हम लिखते हैं परेशानी, गम, धड़का, घबराहट। इसी तरह ये तो सारे बगैर हम मानी सोचे बोल देते हैं ना एक दूसरे के मानों में, लेकिन जहाँ से ये लफ्ज़ शुरू हुए थे तो इनके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बात थी। अरबी ज़बान में तो ये इसलिए बहुत ही आसान है कि हर लफ्ज़ के पीछे कोई ना कोई रूट ज़रूर होता है, और रूट समझ आ जाता है तो वो चीज़ समझ आ जाती है। और अगर आपके पास मुतरादिफातुल कुरान बुक हो तो उसमें हम मानी अल्फाज का मुख्तलिफ तरीके से मतलब पता है, कि मसा गम के लिए अरबी ज़बान में कितने लफ्ज़ हैं, बारिश के लिए कितने लफ्ज़ हैं, और सो ऑन। तो इस तरीके से होता क्या है कि आप एक एक चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करते जाते हैं तो आपको फ़र्क पता चलता है। जब ज़रा सा बंदा कुरान में कहना चाहिए कि हाथ सेट करता है ना, तो फिर उसके बाद उसके दिल में आता है ये लफ्ज़ ऐसा क्यों है, अच्छा इधर नफ्स आया, यहाँ कल्ब क्यों आ गया, अच्छा यहाँ अफ़ीदा क्यों आ गया। तो ये गोया के एक गौर व फिक्र करने का अंदाज़ होता है। तो ज़रा सा हम को समझिएगा, फिर आपको इस दौर से मोहब्बत और होगी। हम कहते हैं पिघला देने वाला गम, पिघलाना, टू मेल्ट, यानी लफ्ज़ हम जो है ना, इसका मानी होते पिघलाना है। अरब लोग कहते हैं हममतुल शहमा फइन्नहुम, मुराद क्या है कि मैंने चर्बी को पिघलाया, चुनाचे वो पिघल गई। ठीक है, अब कभी आपने सोचा था लफ्ज़ हम के अंदर पिघलना, क्या वाकई कभी किसी गम की वजह से आप इतना नहीं खुलते और जलते कि लगता अपनी ही चर्बी पिघल गई। हमारे यहाँ कहते सूख गई बेचारी, हाय गम खा गया बेचारे को, ये वो गम होता है। इसी से लफ फिर हम है, हम यो हम, इरादा, कौन सा इरादा, जो दिल ही में हो भी आपको भी याद आ जाएगा। वलकद हम्मत बिही व हम्मा बिहा, और उस औरत ने भी उसका कसद किया और वो भी उसका कसद कर लेते अगर बुरहान ना देखते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अजीज़ मिस्र की बीवी ने आपके बारे में एक इरादा किया जो भी दिल में ही था, ऊपर से तो फिसला रही थी ना, लेकिन अंदर तो कुछ और ही चाल थी ना। बिल्कुल इसी तरह हम के अंदर ऐसा इरादा जिसमें कुछ छुपा हो लेकिन इंसान दूसरे को बताए ना। तो जब आप लफ्ज़ हम बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा, तो पिघलाने वाले हम वो गम कह लीजिए कि जिसके बाद इंसान घुल घुल कर मर जाए। अब जितना ज़्यादा इंसान के अंदर गम रहता है ना, उतना वो ज़्यादा पिघलता है। जो लोग अपने गम गुस्से का इजहार कर लेते, उसको सुना, उसको बता, उसको कह सुन, चले बुरा तो है, अच्छी बात तो नहीं, लेकिन आप देखेंगे बड़ी जल्दी बहल भी जाते हैं फिर बोल बाल के। जैसे लोग गुस्से में आते हैं कुछ चुप हो जाते हैं, और कुछ खुद बोल बाल के ठंडे हो जाते हैं। दोनों के कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स हैं, लेकिन इंसान तो इंसान ही है। बिल्कुल इसी तरह अब हम में मानी था पिघलने का, पिघलाने वाले गम। आगे चलिए, अब आपको मैं अगला लफ्ज़ लिखाऊंगी तो आपने और खुश हो जाना है। हुज़न, यहाँ लफ्ज़ है हज़न, ये अल हुज़्न भी होता है और अल हज़न दोनों तरफ से आता है। इसका मानी होता है सख्ती, ज़मीन की सख्ती। तो फिर हज़न कौन सा गम है? गम की वजह से जो बेकरारी सी तबीयत के अंदर पैदा हो जाती है ना, इसको हज़नुन और हुज़नुन कहते हैं। इसका ऑपोजिट है फरहन, फरह, फरहत, हमारे यहाँ बड़ा मारूफ नाम है ना। यानी वो सख्ती बंदे में जो किसी भी बेकरारी की कैफियत के साथ पैदा होती है। ज़मीन की सख्ती के लिए तो लफ्ज़ आ जाएगा अल हुज़्न, अल हुज़्न वल हज़न, लेकिन जब गम के लिए ना सिर्फ ज़बर ज़ेरों का फ़र्क है, हज़नुन और हुज़्नुन, यानी कुछ गम बंदे को तोड़ने के लिए आते हैं। पहला क्या था? पिघलाने के लिए। कुछ गम तोड़ ही देते हैं, ऐसे बंदा अंदर से टूट जाता है ना, बेकरार, बेचैन, इर्तियाश, खुशी खुशी नहीं लगती। पर आप नोट करें ज़रा, कुरान पाक में ये लफ्ज़ क्या इंसानी जज्बात के लिए आया है, इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने ये दुआ उस वक्त मांगी थी जब उन पे तोहमत लगी, और ये लफ्ज़ हज़रत याकूब ने मांगे जब बेटे का गम पड़ा। गोया कि इसमें इंसानी जज्बात होते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कुछ लोग कुरान को समझ कर जब रोए तो कुरान क्या कहता है? तवल्लवा युनहुम तफीदु मिन दम हज़ना। वो तो निजाशी और उसकी कौम के लिए था ना, सातवें पारे के शुरू में ये आयत, सूरत तौबा की गज़वे तबूक के मौके पे सवारियों के ना होने की वजह से जो लोग आगे जा ना सके उनके आंसुओं की बात है। तो आप देख रहे हैं कि गम के लिए कितने मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं। फिर आगे आप देखिए कि अज्ज़, आइन से, आइन जीम ज़ा, उर्दू में बोलते हैं आजिज़ आ गई, मोजज़ा भी लफ्ज़ इसी से है। तो अज्ज़ ऐसा गम जो बंदे को आजिज़ कर दे, जिस तरह आप कहते हैं ना कि मैं तो बेबस हो गई। अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहें ना, तो आपको कुरान पाक में इसका जो मुख्तलिफ तरह से इजहार है उसको समझना पड़ेगा। बस आप देखिए कि लफ्ज़ मोजज़ा, वो चीज़ जिसको समझने से अक्ल आजिज़ आ जाए, ठीक है। इस तरह अजुज़ुल इंसान कहते हैं इंसान का पिछला हिस्सा। अब आपको मुझे अपना पिछला हिस्सा दिखता है? शीशे में दो शीशे रखें फिर तो आप देख लेंगे, लेकिन आप आजिज़ होते हैं ना पीछे देखने से। कभी चुटिया भी देखनी हो तो दो शीशों को रख के देखते हैं ना। इसी तरह आप देखिए कुरान पाक में आता है, कान्नहुमा अजाज़ नखलिन खाविया, जैसे खजूरों के खोखले तने थे, एक कौम की तरफ नस्बत है, कौम याद है। तो अजुन किसी चीज़ से पीछे रहना, रह जाना, या ऐसे वक्त में हासिल होना जबकि वक्त निकल चुका हो, ठीक है। तो फिर अज्ज़ में क्या आया कि अल्लाह आजिज़ करने वाले गम ना दे दे। जैसे कभी बच्चों के आगे लोग आजिज़ हो जाते हैं, क्या करें अब, सुनते नहीं हैं, जवान हो गए हैं ना, अब कमाने भी लग गए हैं, अब क्या बात करूं। तो आजिज़, जैसे बंदे के अंदर एक अजीब सी कैफियत होती है उसमें, कि जिसमें वो महसूस करता है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो फिर आपने पिघलाने वाले, तोड़ने वाले और आजिज़ करने वाले गमों का नाम लिया। आगे देखिए, वल कसल, काफ सीन लाम, बोझ, गिराबारी। किसी ऐसे मामले में बोझ जाहिर करना कि जिसमें गिराबारी करना मुनासिब ना हो, बुरा समझा जाए। यानी कसल का एक मानी होता है सुस्ती, कुसलान, कुसाला, कसीलुन, ये सारे कुरान में आते हैं, मुनाफिकों की अलामत है। वला यातून सलात इल्ला वहुम कुसाला, नमाज को आते हैं तो सुस्त होकर आते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अरब लोग बोलते हैं, एक मुहावरा है, फलानुल ला यकसिलु मुहुल मकासिल, इसको असबाब काहली सुस्त नहीं बनाते, यानी सारे असबाब मौजूद हैं कि सुस्त हो जाए, लेकिन ये सुस्त नहीं होता। इस तरह फहलुन कसिलुन, वो नर जो जुफ्ती में सुस्त हो, यानी मेल है लेकिन उसमें अब रिप्रोडक्शन की कुव्वत इस्तेदात नहीं है। इसी तरह इमरातुन मिकसानुन, सुस्त औरत को भी कहते हैं, यानी जो बहुत ही नाज और इस तरह के नखरे दिखाती है। तो क्या पता चला कसल में क्या है? सुस्तियाँ। कुछ गम बंदे को सुस्त भी कर देते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, नहीं आई कैंट फेस एनी वन, मैं अब किसी को सामना नहीं करूँगी, नहीं फिर आंटियाँ पूछती हैं आप अभी तक इधर क्यों हैं, फिर आप ससुराल क्यों नहीं गई, बस इस किस्म के गम समझिए। फिर अगली चीज़ देखिए, जुबन, जबीन कहते हैं पेशानी के किनारे को, और पेशानी के जो दोनों तरफ के किनारे होते हैं ना, इनको जिबीनान कहते हैं। हजरत इब्राहिम और इस्माइल के बीच में क्या मुकालमा है? बतल्लहु लिल जबीन। तो जबीन नाम जिसका भी, उसको बता दीजिए पेशानी के दोनों किनारे। बाप ने बेटे को मतलब बैकवर्डली लिटा दिया। तो जुबन होती है बुजदिली, दिल का ऐसे मौके पर कमजोरी का इजहार करना जहां इसे कुव्वत का मुजाहरा करना चाहिए था। इसीलिए भी जबानुन कहते हैं बुजदिल को, मर्द हो या औरत। तो क्या पता चला कि अल्लाह मुझे बुजदिल होने वाली चीजों से बचा। और बुजदिली अपनी जगह बहुत बुरी चीज है। ये 8 चीजों से निजात हमने अलग अलग पढ़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को उससे फायदा भी हुआ था। यानी अल्लाह मुझे बुजदिल ना बना, कावर्डनेस ना, जरा सा दीन का काम ही ना कर सकूं, जरा सा बड़ा टारगेट सामने आ जाए तो मैं इंस्टेंट वर्ड्स में पड़ जाऊं, और जरा मुझसे कोई एक्स्ट्रा काम मांग ले तो मेरा बुरा हाल हो जाए। ठीक है, फिर बुखल तो सभी को पता है, बखील, फलां बड़ा बखील है। जरूरियात जिंदगी पे भी खर्च ना करना, जमा करदा जखीरों को इन जगहों से रोक लेना जहां पर खर्च करने से रोकना नहीं चाहिए। यानी अपनी स्टेटमेंट देख के खुश होते रहना और 2 रुपए की चीज भी ना खर्च करना घर वालों पे। इसका ऑपोजिट जवाद होता है, जऊत, जूत, बहुत ही जेनरस। तो बखीला, उसने बुखल किया। बाखिलुन कहते हैं बुखल करने वाले को, और बखील फईल का वजन है मुबालगे का, सीगे मुबालगा है, बहुत ही ज्यादा बुखल। ठीक है, अब 2 तरह का बुखल होता है। एक ये कि इंसान अपनी चीजों को खर्च करने से रोक ले, और दूसरा है कि दूसरों को भी खर्च करने से मना करे। तो दोनों ही में अपने हिसाब से बुराई है। फिर आखिरी चीज है कि दलाइद्दीन। दीन कहते हैं कर्ज को, दाल याद नून, कुरान पाक में एक आयत भी आयते दैन कहते हैं उसको। और दला का लफ्ज अगर आप देखें यहाँ जो आपके सामने है, दात लाम आइन, दला आ दाल लाम आइन, तो दलाए दैन चढ़ जाना, कर्ज का आपके ऊपर चढ़ जाना, जिसको आप जेरे बार होना नहीं कहते, वो लफ्ज है। आपको जब भी अपनी जरूरत से जायद कोई चीज खर्च करनी पड़े ना, तो इस आयत को याद रख लीजिए। यानी नीड से बढ़कर वॉन्ट्स के खाते में पड़ना और फिर जेरे बार हो जाना। और वह गलबत रिजाल, लोगों का गलबा, जिस तरह होते हैं ना कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी में बहुत वीक होते हैं तो हर वक्त ही लोग उस पर चढ़ाई करते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि पानी उधर ही बहता है जिधर ढलान होती है। तो क्या पता चला कि अल्लाह दूसरे मुझे ऐसे ही रोलिंग स्टोन ना बना ले और मुझे इनमें से एक एक चीज से निजात दे। अब देखें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हसनी वल अज्जी वल कसली वल जुबनी वल बुखली वदलाई दैनी वगलबत रिजाल। अपने लफ्ज़ों में जब भी हमने मानी लिए ना, मैं कैसे मांगूंगी दुआ, ए अल्लाह मैं पिघला देने वाले गमों से तेरी पनाह में आती हूँ, तोड़ देने वाले गमों से, आजिज कर देने वाले गमों से, सुस्त करने वाली चीज़ों से। यानी अल्लाह मुझे सुस्तियों से भी बचा, और मुझे बुखल से भी बचा, और मुझे बुजदिली से भी बचा, और मेरे ऊपर कर्जे ना चढ़ें। ये तो सारी उम्मत को ही मांगने की लगती है दुआ आजकल, तो हम खुशी खुशी कर्जों में दाखिल हो जाते हैं। और फिर लोगों का गलबा, यानी लोग मेरे पर मुसल्लत ना हो, यानी मेरे पर इल्ज़ाम ना लगे, मेरे बारे में नेगेटिविटी का शिकार ना हो। यकीन करें कि इंसानी मामलात में जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, उसके लिए बेहतरीन दुआ है। पूरे शऊर से इसको मांगते हैं और फिर इंशाल्लाह इसको याद भी करते हैं।
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والعجز والكسل والجبن والبخل والجبن والبخل ودلع الدين وغلبة الرجال ودلع الدين وغلبة الرجال اللهم من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ودلع الدين وغلبة الرجال ودلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ودلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ودلع الدين وغلبة الرجال
आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप अल्फाज के अंदर खोएंगे ना, उतना आपको खुद भी पता चलेगा आप क्या मांग रहे हैं, और फिर अल्लाह तो जानता ही है। कई दफ़ा हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मांग रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता मांगा क्या है, कैसे ये चीज़ों को सोचा। तो ज़रूरत है इस बात की कि इंसान हमेशा अपने आप को अल्लाह ताला के सामने न्यासमंद रखे, अल्लाह के आगे अपने आप को झुका के रखे, और फिर जितना ज़्यादा अल्लाह ताला के तरफ उसका रुख होगा ना, तो अल्लाह ताला भी उसको देंगे। कभी आप सोचिए हाँ कि कोई आपसे कुछ मांग रहा हो और ध्यान कहीं और हो, कभी बच्चे नहीं कुछ मांग रहे हैं और नज़रें टीवी पे हैं या नज़रें फ़ोन पे, तो आप क्या कहते हैं, मेरी तरफ देख के बात करो, तवज्जो इधर करो। तो दुआओं में असल में तवज्जो बड़ी ज़रूरी होती है, इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बुक में से हमने ये दुआएं पढ़ी, गम और हुज़्न को दूर करने की।